ಅಂತ ವೇದ. Performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and putative activities. Simply, by performing devotional service, he attains all these, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. Repeat kijiye. A person who accepts the path of devotional service.
The path of devotional service
is not bereft of.
Is not bereft of
the results derived from.
The results derived from
studying the Vedas.
Studying the Vedas.
Performing sacrifices.
Performing sacrifices.
Undergoing austerity.
Undergoing austerity.
Giving charity.
Giving charity.
Or pursuing philosophical and putative activities.
Or pursuing philosophical and putative activities.
Simply by performing devotional service,
simply by performing devotional service,
he attains all these.
He attains all these.
And at the end,
he reaches
the supreme eternal abode.
Supreme eternal abode.
The purport is thoda lamba hai. So the last stroke is chapter ka. So thoda sa padhenge purport. This verse is the summation of the 7th and 8th chapters. This is the sum of 7th and 8th chapters. The conclusion of 2 chapters is this one sloka, which particularly deal with Krishna consciousness and devotional service. One has to study the Vedas under the guidance of the spiritual master and undergo many austerities and penances while living under his care. A brahmachari has to live in the home of the spiritual master just like a servant, and he must bathe alms from door to door and bring them to the spiritual master. He takes food only under the master's order, and if the master neglects to call the student for food that day, the student fasts. These are some of the Vedic principles for observing brahmacharya. After the student studies the Vedas under the master for some time, at least from age 5 to 20, he becomes a man of perfect character. The study of the Veda is not meant for the reaction of armchair speculators, but for the formation of character. यहाँ बताया गया है कि 5 साल से लेकर 25 साल की एज तक एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाती थी, ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग दी जाती थी वैदिक कल्चर में 15 साल के। तो 15 साल ट्रेनिंग के बाद ही बिकम्स ए मैन ऑफ परफेक्ट कैरेक्टर। तो स्टडी ऑफ वेदास यहाँ पे लिखा हुआ है इज नॉट मेंट फॉर द रिक्रिएशन ऑफ आर्म चेयर स्पेकुलेटर। व्हाट द मीनिंग ऑफ आर्म चेयर स्पेकुलेटर? हाँ, जैसे बहुत वेदों के बहुत बड़े बड़े पंडित आपको मिलेंगे, भगवद गीता को कई बार पढ़ा है, लेकिन केवल चेयर पे बैठ उसको रियलाइज नहीं किया, भगवद गीता को रियलाइज नहीं किया, केवल रिक्रिएशन पर्पज से। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? इंटरटेनमेंट। हाँ चलो भाई, पढ़ना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है, एक डिग्री ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, भगवद गीता में पी यूटी करेंगे, पी यूटी में भगवद गीता। और ध्यान से बताया गया है कि जो वेदक वेदों का जो स्टडी है वो किस लिए करना चाहिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। दैट शुड बी द पर्पस ऑफ स्टडिंग द वेदास। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू स्पिरिचुअलिटी नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर बट टू फॉर्मेशन ऑफ सम प्रेस्टीज। But people should know that I am also going to ISKCON temple. I am also chanting Hare Krishna. लोगों को ये नहीं करना सोचना चाहिए कि मैं पापी हूँ, मैं कभी कभी भक्ति भी करता हूँ, कभी कभी भक्ति भी करता हूँ, तो लोग इतना पाप करता हूँ पर लोगों को दिखाने के लिए नहीं, नहीं मैं पापी ही नहीं हूँ, थोड़ा भक्ति भी कर लेता हूँ कभी कभी ताकि पूरा बदनाम नहीं हो जाऊँ, इसके लिए कभी कभी पढ़ते हैं या भक्ति भी करते हैं। पर उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर कैरेक्टर, दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर हार्ट। After this training, this brahmachari is allowed to enter into household life and marry. जब brahmachari आश्रम में training होती है, उसके बाद अगर उसकी इच्छा है, तो he is allowed to enter into grihastha आश्रम after marriage. When he is a householder, he has to perform many sacrifices so that he may achieve further enlightenment. बहुत सारे यज्ञ करते हैं, sacrifice का मतलब यज्ञ, संस्कृत में सैक्रीफाइस को यज्ञ बोलते हैं, हिंदी में सैक्रीफाइस को बलिदान बोलते हैं, बलिदान, पर संस्कृत में यज्ञ यज्ञ, और यज्ञ बहुत अच्छा माना जाता है ना, है ना, यज्ञ अच्छा माना जाता है संस्कृत में। अच्छा, आपने यज्ञ किया, सैक्रीफाइस किया, बहुत अच्छा है, अपने भी यज्ञ, ये यज्ञ वो यज्ञ होता है, बलिदान देते हैं, तो रूप से उसमें बलिदान बोलते हैं, तो ये यज्ञ है। तो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो उनको बहुत तरह के यज्ञ करने पड़ते हैं, और ही मस्ट ऑल्सो गिव चैरिटी अकॉर्डिंग टू द कंट्री टाइम एंड कैंडिडेट, तो चैरिटी भी देते हैं, है ना, चैरिटी देते हैं, यज्ञ करते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग चैरिटी इन गुडनेस। देन आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम हाउसहोल्ड लाइफ अपॉन एक्सेप्टिंग द ऑर्डर ऑफ वन प्रस्ट ही अंडरगोज सीवियर क्रिमिनेसेस। उसके बाद क्या होता है, 50 साल की उम्र में वो फैमिली लाइफ से रिटायर करता है। आजकल तो नहीं करते हैं, आजकल तो फैमिली लाइफ देश तक चलता है, मृत्यु के समय तक, जब तक जबरदस्ती नहीं रिटायर करवा जाए तब तक रिटायर नहीं होते, है ना, अगर ऑप्शन दिया जाए तो लोग कभी भी रिटायर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन भगवान ऑप्शन नहीं देते हैं, भगवान कहते हैं कि नहीं अब आपका समय आ गया, तो वैसे कितना भी आसक्त हो इस संसार में तो वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रह सकता यहाँ पे, तो इस तरह से हम बताएगा कि रिटायरिंग वेरी इम्पोर्टेंट, इज वेरी इम्पोर्टेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। इन वैदिक कल्चर कितना अच्छा सिस्टम था कि लोग जो है 50 साल की उम्र तक, 25-50 साल की उम्र जो है वो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते, 25-50 साल की उम्र में बच्चों की भी शादी हो जाती थी, फिर रिटायर कर जाते थे, तो वानप्रस्थ आश्रम जाते थे। वानप्रस्थ आश्रम में भी
है
50 साल के बाद, हाँ वानप्रस्थ में जाएगा, उसके बाद वानप्रस्थ मतलब वन को प्रस्थान करेगा, तो कलयुग में वन है ही नहीं तो प्रस्थान कहाँ करेंगे, नहीं प्रश्न उठ सकता है ना, तो ये कलयुग में तो वन है ही नहीं,
कौन सी
वन, वन पंचसोर्धम वनम ब्रजेत, तो 50 साल के बाद जो है वो वन को जाते थे, वानप्रस्थ जिसको प्रस्थान करना, वन मतलब वन, तो आजकल तो वन है ही नहीं, कोई जिसे प्रस्थान कहाँ करेंगे, प्रॉपर लिखते हैं कि वृंदावन, वन मतलब वृंदावन मथुरा, है ना, ये जो होली प्लेस है उस पर भ्रमण कीजिए, और उससे भी नहीं तो इसको हम तो मंदिर है वहाँ पर प्रस्थान जा सकते हैं, ये भी वन ही है ना, या प्रचार कर सकते हैं, घूम घूम के टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या कर सकते हैं उसके विचार कर सकते हैं। तो इसमें बता रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे तरह के ये आज किसे कॉन्शियसनेस वन प्रस्ताव से अलग होता है। पहले का वन प्रशासन जो मतलब त्याग करते थे लोग फिनेंस करते थे। तो अल्टीमेटली इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि चैरिटी बहुत लोग चैरिटी देते हैं ना, चैरिटी देते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं और बहुत वेदों का अध्ययन करते हैं, वाद विवाद डिबेट करते हैं है ना, इतना स्पेकुलेशन डिबेट शास्त्रों के ऊपर है ना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं इसमें दैट सिंपली बाई परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस ही अटेम्प्ट ऑल दी एंड एट दी एंड ही रिचेज द सुप्रीम एटर्नल लेवल। तो ये अगर कोई भक्ति करता है, अगर कोई भक्ति करता है तो उसको अलग से चैरिटी देने की जरूरत नहीं है, अलग से वेदों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, अलग से यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, अलग से तपस्या करने की जरूरत नहीं है। केवल भक्ति करने मात्र से आपको इन सारी चीजों का फल प्राप्त हो जाएगा। और वो फल क्या है? फल क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? हाँ, गो बैक टू गॉड है, ही रीचेज द सुप्रीम एटर्नल गोल। हाँ, नाइन प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, स्मरण श्रवण कीर्तन, स्मरण बंधन, पाद सेवन, दास चरे, पूजन सखी जन, आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलास, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम दास साक्षम बंधनम आत्मनिवेदनम, ये सारे नौ प्रोसेस है। उसको करने मात्र से आपको चैरिटी ये सब सबका फल रिजल्ट मिल जाएगा। और वो रिजल्ट ये है कि हम भगवान के नाम में वापस चले जाएंगे एक स्ट्रोक में न, एक स्ट्रोक में केवल कृष्ण की भक्ति करने मात्र से बाकी सारी चीजों का रिजल्ट भगवान बोलते हैं कि आपको मिल जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप बताइए। तो आज के समाज में आप देखिए कि लोग कई तरह के बोलते, नहीं नहीं हमें तो चैरिटी देता हूँ प्रभु जी, देखिए इतना चैरिटी दिया मैंने, इतने हॉस्पिटल खोल दिए, आप लोग क्या कर रहे हो, केवल मंदिर में बैठते हरे कृष्ण करते हैं, कुछ करो जनता के लिए कुछ करो। लोग इतने दुख झेल रहे हैं, उनको भूखों मर रहे हैं, उनके लिए कुछ करो। ये सब बैठने से क्या होगा, हरे कृष्ण करने से क्या होगा, ये कहाँ लिखा है कि सब कुछ समाज की चिंता छोड़ के आप हरे कृष्ण करने लगे, आपको यज्ञ करना चाहिए, आपको त्याग करना चाहिए, आपको आपको चैरिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, अगर कोई भक्ति करता है तो इन सारी चीजों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, ये सारी चीजें अपने आप साइड बाय प्रोडक्ट हो जाती है ना, ये बताया गया है भगवान। तो ये कंक्लूजन है ना लास्ट श्लोक में भगवान, लास्ट श्लोक हर अध्याय का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक चैप्टर का लास्ट श्लोक जो होगा ना उसमें भगवान क्या देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। लोग क्या है, लास्ट नहीं पढ़ेंगे कंक्लूजन नहीं पढ़ेंगे, दिस इज द प्रॉब्लम, बीच में फंस जाएंगे है ना। जैसे एक व्यक्ति था मुस्लिम था, तो उसको उसने बोला कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, कुरान में बोला है कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो सब लोग मस्जिद जा रहे थे, वो जाके बोलने लगा आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो बोले मस्जिद जा रहे हैं, कि पागल हो गए हो, कुरान में लिखा है कि मस्जिद नहीं जाना चाहिए। तो अच्छा, हमने तो कुरान में पढ़ा है, लिखा है कि मस्जिद जाना चाहिए, कुरान पढ़ के तो पूरा विश्व मस्जिद जाता है। नहीं नहीं, आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा है। तो लोगों को लगा सर अगर ये बात है कि मस्जिद नहीं जाना चाहिए, कुरान में लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम तो जो चाहते हैं वही बात हो जाएगा, तो मस्जिद जाना तो बस चाहते नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, चलो दिखाओ कहाँ लिखा है। तो उसने कुरान खोला, ऐसे कुरान में लिखा है, तो इस पेज में सबसे लास्ट सेंटेंस After these misgivings have been perfectly cleared. Last condition, after these misgivings have been perfectly cleared. So, this is the Sriman Pali. One should not go to the masjid. So, ये लिखा हुआ था, one should not go to the masjid. पेज उलट के देखा तो लिखा था, इधर लिखा है विदाउट टेकिंग बाथ. तो वो नहीं पढ़ा, इसने वो नहीं पढ़ा, उसको जो भी खोज रहा था वो मिल गया. बस वहीं से बंद खत्म, भगवद्गीता खत्म हो गया, पुराण खत्म. यही चाह रहा था मैं, मिल गया पुराण खत्म. समझ रहे ना? इसी तरह से लोग कंक्लूजन को नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है ना. हर अध्याय का कंक्लूजन देखिए, एक ये अध्याय का कंक्लूजन ये रहा, अभी नवे अध्याय में जाइए, नवे अध्याय का कंक्लूजन देखिए. नवे अध्याय का लास्ट श्लोक क्या है बताइए. मन्मना भव मद्भक्तो
मद्याजी
माम नमस्कुरु,
मद्याजी माम नमस्कुरु,
मामेव इष्यसि युक्तैस्त्वम्,
मामेव इष्यसि युक्तैस्त्वम्,
आत्मानं मत्परायणः,
आत्मानं मत्परायणः.
अर्थ पढ़िए, संजय करो लाउडली पढ़िए.
Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely will come to me.
Prabhupada Prabhupada kya likhte hain? In this verse, it is clearly indicated that Krishna consciousness is the only means of being delivered from the clutches of this contamination material world. तो कंक्लूजन में क्या भगवान बोल रहे हैं? नेक्स्ट चैप्टर कंक्लूजन है, मत भक्त हो, मेरा भक्त बनो, मत ज्ञानी मत नहीं बोल रहे हैं, या मत मत कर्म योगी बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं, भक्त बोल रहे हैं ना, मत भक्त हो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, किसी और को नमस्कार मत करो, बोल रहे हैं मेरी मतलब मुझे कृष्ण भगवान को, है ना. कितना क्लियर है ये. अब आप बीच में पढ़े ये यहाँ पे क्या बता दिया पूरा कंक्लूजन. और नाइन्थ चैप्टर जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, नाइन्थ चैप्टर जो भगवद्गीता का है वो सबसे हाईएस्ट मोस्ट प्योर नॉलेज है. नाइन्थ चैप्टर में नौवें अध्याय में भगवद्गीता का, और क्योंकि यही श्लोक जो है वो फिर से रिपीट होगा अठारहवें अध्याय में, सेम श्लोक. सबसे लास्ट श्लोक जो भगवान बोलते हैं यही श्लोक है, अठारहवें अध्याय का फली कंक्लूजन जब बताते हैं दिन को, यही श्लोक एजेटिक रिपीट होगा. अठारहवें अध्याय का जो लास्ट सिक्सटी फाइव श्लोक देखिए, दो 65 और 66 ये दो जो श्लोक हैं वो लास्ट इंस्ट्रक्शन है. अर्जुन को भगवान ने लास्ट इंस्ट्रक्शन जो दिया वही था, क्योंकि देखिए 63 श्लोक का मैं क्या बोला, 63 श्लोक का पढ़िए, मीनिंग पढ़िए मीनिंग.
Thus, I explain to you knowledge is more comprehensive, deliberate on this truth, and then the what you wish to do.
63 में देखिए क्या भगवान ने बोल दिया कि आपको मैंने अब पूरा नॉलेज बता दिया है ना. Thus, I have explained to you knowledge is still more confidential. है डिलीवरेट ऑन दिस फुली एंड देन डू व्हाट एवर यू डू, उसको चॉइस दे दिया देखो आप यथा इच्छसि तथा कुरु. फिर भी भगवान माने नहीं, सोचे कि सोचो क्या कंफ्यूज हो जाए, तो जाते जाते दो तीन श्लोक और बोल दिया. अब बोल दिया कि आप अच्छा जो करो, फिर भी रहा नहीं गया, सोचे कहीं गलत, फिर भी डाउट है भगवान को भी, कहीं गलत ना डिसाइड कर ले, है ना। तो फिर श्लोक दो तीन श्लोक और बोलते हैं इसके लिए, बोल रहे हैं देखो और स्ट्रेस दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं 66 श्लोक में?
बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड, आई एम स्पीकिंग टू यू माई सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ ऑल, हियर दिस फ्रॉम मी फॉर इट इज फॉर योर बेनिफिट।
तो पहले बोल दिया कि सब बता दिया आपको, आई हैव एक्सप्लेन टू यू, नॉलेज इज स्टिल मोर कॉन्फिडेंशियल। तो जो इससे बहुत ज्यादा गुप्त था वो भी बता दिया आपको, एक्सप्लेन ऑलरेडी। फिर यहाँ पे और क्या बता रहे हैं? फिर यहाँ बोल रहे हैं कि और कुछ बताऊंगा, आप मेरे बहुत मित्र हो इसलिए मैं आपको बोलने जा रहा हूँ सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, और उससे भी ऊंचा कुछ बताने जा रहे हैं अभी, बोल रहे हैं, है ना। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ ऑल, सबसे जो दिव्य ज्ञान जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ, और ये सुनो और ये तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ, है ना। और फिर क्या बोल रहे हैं श्लोक क्या है? मन मना भो मद भक्तो
मद्याजी
माम नमस्कुरु,
मद्याजी माम नमस्कुरु,
मामे वैश्यसि सत्यं ते,
मामे वैश्यसि सत्यं ते,
प्रतिजानी प्रियोऽसि मे,
प्रतिजानी प्रियोऽसि मे।
और वो श्लोक क्या था? मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, वही श्लोक था ना 34। और यहाँ भी क्या है? मन मना भो मध्याधिमान नमस्कार। देखिए ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है वो 9वें अध्याय के लास्ट श्लोक में भी बताया गया और 18वें अध्याय के लास्ट श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं। देखिए सेम चीज रिपीट, मतलब दिस इज द डिजायर ऑफ द लॉर्ड कि आप मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता, है ना। और फिर लास्ट जो श्लोक बोलते हैं, सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन वो 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य
सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज,
मामेकं शरणं व्रज,
अहं त्वां सर्व पापेभ्यो,
अहं त्वां सर्व पापेभ्यो
मुच्छयिष्यामि मासि च,
मुच्छयिष्यामि मासि च।
पढ़िए मैंने
Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear.
तो क्या बोल रहे हो? सारे धर्मों को त्यागो और मेरे शरण में जाओ। अब भाग आप पढ़ेंगे, अगर चौथे अध्याय को पढ़ेंगे आप, वहाँ भी भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिन भवति भारत अभिथानम धर्म से तदात्मान से जाने। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक मैं उतार लेता हूँ और धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। यहाँ बोल रहे सारे धर्मों को छोड़ दो। वहां बोले कि मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ और यहाँ बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में रहो। सब किस धर्म की स्थापना करने आए हैं भगवान? शरण लेने के धर्म की स्थापना करने आए हैं। ये सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि आप भगवान की शरण लो, इस धर्म की स्थापना करने आए। ये धर्म है, ये टॉपमोस्ट धर्म है। क्या? भगवान की भक्ति करने, भगवान की शरण में आना। तो इस धर्म की स्थापना करने आए, है ना। तभी तो बोल रहे हैं कि सारे धर्म को त्याग दो। तो बाकी सारे धर्म, इसके अलावा जितने धर्म है वो क्या है? झूठे धर्म है। और जिस धर्म की स्थापना भगवान करना चाहते हैं वो धर्म ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यही धर्म की स्थापना करना चाहते हैं भगवान। प्लीज द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता कि जितने धर्म है, ये पितृधर्म, पुत्र धर्म, मातृधर्म, देश धर्म, समाज धर्म है, बोलते हैं ना, देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, पुत्र भक्ति, पत्नी भक्ति, पति भक्ति, ये सब भक्ति को त्याग के एक ही भक्ति करो, कृष्ण भक्ति।
माता पिता का जो धर्म होता है वो मरने के बाद होता
है। हाँ, अगर आप अपने आप को पुत्र समझते हैं तब, अगर आप अपने आप को पुत्र समझते हैं सब माता पिता के रेडी में आप तो आत्मा हो और आत्मा के तो कोई माता पिता है नहीं, आत्मा के तो अहम बीज प्रदर्शिता सर्व योनि से कौन से अहम बीज प्रदर्शिता मैं ही पिता हूँ। मुमयवान से जीव लोग के जीव भूत सनातन के संसार में जो जीव है मेरा अंश है, तो हमारे माता पिता कौन है? भगवान है। तो जो अगर आप माता पिता समझते हैं कि हाँ ये मेरा माता पिता है, तब आप जो है वो उनको आप गले नहीं चुरा सकते। तो जिस व्यक्ति को ये अनुभूति हो गई कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ ना, और इस बात को समझ गया, तो फिर वो उसको जरूरत नहीं है मातृभक्ति की, भक्ति वो भगवत भक्ति कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ये बताया गया सबको। लेकिन हाँ जब तक उसको लगता है कि नहीं मैं पुत्र हूँ और ये मेरे माता पिता हैं, तब तक वो ऋण से मुक्त नहीं है। जब तक उसको इस बात का ज्ञान नहीं हो गया तब तक वो ऋण से मुक्त नहीं होगा, ऋण ऋण ही जाएगा। और इसका ज्ञान जन्म जन्मांतर तक भी नहीं होता है ना, कई जन्म लगते हैं तब भी ज्ञान नहीं हो पाता है कि मैं आत्मा हूँ। आप लोग बहुत बुद्धिमान है, भगवान है कि आपको इसका मौका मिल रहा है जानने का कि आप आत्मा है। कितने लोग जानते हैं इस बात को? तो वो जो धर्म है तो मदद करने का धर्म जो है वो उनको त्यागने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझो कि केवल मेरी शरण लो। क्यों? इसलिए कि आप ये बात समझ लो कि आप आत्मा हो, आप जो है वो एक अर्जुन नहीं है। अर्जुन जो युधिष्ठिर का भाई है और कुंती का पुत्र है और भीष्म पितामह का पोता है, ये मत सोचो। ये अर्जुन जो आपको, ये अर्जुन मेरा दास है और इसका एक ही उद्देश्य है कि मेरे शरण में आए। इस बात को समझो, भगवान यही समझा रहे हैं, भगवदगीता पूरी भगवदगीता यही समझाई है ना कि अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा। अरे इनको मैं कैसे, इनका तो बहुत कर्ज है मेरे ऊपर, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं है कि नहीं, और इनको इनके ऊपर इनका मेरे ऊपर ऋण है तो जो कैसे मार सकता हूँ। कृपाचार्य मेरे का मेरे ऊपर ऋण है और देखिए मेरे धृतराष्ट्र हैं है? उनके पुत्र हैं ये, कैसे मार सकते? धृतराष्ट्र ने हमारा लालन पालन किया, पांडु जब मर गए तो उनका बहुत बड़ा ऋण है मेरे ऊपर है ना। और ये देखिए भीष्म पितामह जी हम अपनी गोद में लेकर खिलाए हैं, उनका बहुत बड़ा ऋण है, उनको कैसे मार सकता हूँ। ये है ना, यही प्रश्न, यही तो भागवत गीता शुरू हुई ना। शुरू कहाँ से हुआ, देखिए खत्म कहाँ हो रहा है। शुरू हुई कि अर्जुन बोले कि इनको नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि इनका ऋण है मेरे ऊपर, इनसे मुझे बहुत आसक्ति है, प्रेम, कैसे मार सकता हूँ। लेकिन समाप्त कहाँ होगा? भगवान बोल रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज, इसका क्या रिलेशन है उसका? कहने का मतलब है कि हम भगवान बताना चाहते हैं कि आप ये बात समझो कि आप इन लोगों को सरेंडर कर रहे हो, शरण ले रहे हो, जिसमें पितामह ये मत लो सरेंडर, इनका शरण मत लो। आप किसका शरण लो? मेरा शरण लो और मैं जो बोलता हूँ वो करो। तो ये नवे अध्याय का कंक्लूजन, तो नवा अध्याय जो है वो भगवद गीता का कंक्लूजन मेन अध्याय है। इसलिए देखिए 18 अध्याय भगवद गीता के, तो सबसे जो गुप्त ज्ञान है वो नवे अध्याय में है, इसलिए बीच में सबसे गुप्त ज्ञान रखा गया, सबसे जो गुप्त ज्ञान रखा गया उसको कहाँ रखा गया? बीच में छिपा के रखा गया है। इन नवे अध्याय का पहला श्लोक पढ़िए, नवे अध्याय का पहला श्लोक पढ़िए। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षे से सुभा।
This most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved the miseries of the material existence.
So most confidential knowledge बोल रहे हैं भगवान। फिर अब बताने जा रहा हूँ नवे अध्याय में, आई एम गोइंग टू टेल यू मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो सबसे गुप्त ज्ञान जो है वो बीच में डाला गया, भगवान ने डाला इधर, तो कोई जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। इधर से भी आप शुरू करेंगे तो पहुंचने में टाइम लगेगा, और इधर से ही शुरू करेंगे तो पहुंचने में टाइम लगेगा। तो शुरू का जो 6 अध्याय है भगवद गीता का, उसमें कर्म योग बताया गया है, और लास्ट का जो 6 भगवद गीता का 3 पार्ट है, 6 अध्याय और 6 अध्याय। शुरू का जो 6 अध्याय है वो कर्म योग से रिलेटेड है, लास्ट का 6 अध्याय जो है वो ज्ञान योग से रिलेटेड है, और बीच का जो 6 अध्याय है 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक ये भक्ति योग है, और इसमें भी जो सबसे बीच में है 9वां अध्याय है वो प्योर भक्ति योग है, उसमें एक भी कोई ज्ञान योग नहीं आएगा आपको या कर्म योग नहीं आएगा, प्योर भक्ति योग 9वां अध्याय पूरा सूर्य पढ़ सकते हैं आप, बिल्कुल भक्ति योग की बात कर रहे होगा। अब वो गुण या ज्ञान क्या है अभी देखिए पढ़ते हैं, केवल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, पढ़ते जाइए संजय प्रभु।
दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन, द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट, इट इज द प्योरेस्ट नॉलेज, एंड बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन, इट इज द परसेप्शन ऑफ रिलीजन, इट इज एवरलास्टिंग एंड इज वाइजली परफॉर्म।
इससे कितना बड़ाई कर रहे हैं भगवान ने, देखिए बोल रहे हैं कि दिस इज किंग ऑफ एजुकेशन है, उसके बाद बोल रहे हैं कि दिस इज द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है, दिस इज प्योरेस्ट नॉलेज है ना, फिर बोल रहे हैं इट गिव्स द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन, अगर आप रियलाइज कर सको तो डायरेक्ट आप देख सकते हो अपने आप को और भगवान को देख सकते हो, और बोल रहे हैं इट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजियन, यह अध्याय जो है दिस इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजियन, इट इज एवर लास्टिंग एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म, इसको जो पालन करेगा वो आनंद पूर्वक रहेगा, कोई कष्ट नहीं होगा उसको, देखिए कितना ये युग ज्ञान, और वो ज्ञान क्या है अब शुरू करेंगे बताना, आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूँ, टॉप मोस्ट सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है।
दोज हु आर नॉट फेथफुल इन दिस डिवोशनल सर्विस कैन नॉट अटेन मी, ओ कंक्वेरर ऑफ एनिमीज, देयरफॉर दे रिटर्न टू द पाथ ऑफ गॉड एंड देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड।
हाँ तो फेथफुल क्या बोल रहे हैं, दोज हु आर नॉट फेथफुल इन भक्ति, तो वो जो है इसको नहीं समझ पाएंगे और फिर से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे, तो इसको बता रहे हैं कि इसको कौन समझ सकता है, तो ये अध्याय को समझने के लिए क्या जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं वो नहीं समझ सकते इसको, इसको समझने के लिए किसकी जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, इसीलिए कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन श्रद्धा बहुत कौन लोग पा सकती है।
This entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them.
तो बता रहे हैं कि मेरा जो अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है वो सारा संसार उसमें आता है, लेकिन मैं सारे संसार सब में नहीं हूँ, सब लोग मेरे अंदर में है तो मैं सबके अंदर नहीं हूँ, सब में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। अनमैनिफेस्टेड मतलब कि दिख नहीं रहा, भगवान दिख नहीं रहे, दिस इज एवरीथिंग इज द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड,
सब
हाँ पूरा जितना है सब भौतिक जगह जितना आपको दिख रहा है, लेकिन लेकिन दिखेंगे नहीं, अनमैनिफेस्टेड इज अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, यानी मैनिफेस्टेड फॉर्म, मैनिफेस्टेड मतलब थ्री फोल्डेड लाइक क्लोथ फॉर्म, और मैनिफेस्टेड फॉर्म जो बोल रहे हैं वो कौन बोल रहे हैं, मैनिफेस्टेड फॉर्म में बोल रहे हैं भगवान, मेरा एक्चुअल फॉर्म जो मैं सामने खड़ा हूँ दिस इज माई मैनिफेस्टेड फॉर्म, पर जो ये जो संसार है वो दिस इज माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म।
And yet, everything that is created does not rest in me. Behold my majestic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and though I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation.
हाँ, यहाँ बता रहे हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान जो हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं, इसलिए उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, है ना, हर जगह व्याप्त है इसलिए अलग से सेपरेट एग्जिस्टेंस, पर यहां भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऑल्दो आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल एंटिटीज, ऑल्दो आई एम एवरीवेयर, am not a part of this cosmic manifestation. इसका भाग नहीं है, हर जगहों पर इसमें नहीं है. क्या हूँ? For myself is a very source of creation. मैं इसमें नहीं हूँ, मैं इसका स्रोत हूँ. मैं इसमें नहीं हूँ. जैसे मैं, मेरे से अगर लैपटॉप निकलता है तो मैं लैपटॉप में नहीं हूँ, मैं लैपटॉप का स्रोत हूँ. ये बता रहा
हूँ. अंडरस्टैंड दैट आई एम द माइटी विंड ब्लोइंग एवरीवेयर, रेस्ट ऑलवेज इन द स्काई, ऑल क्रिएटेड बींग्स रेस्ट इन मी.
एग्जाम्पल दे, बहुत मुश्किल है समझना ये श्लोक, इसलिए थोड़ा एग्जाम्पल जो समझा रहे हैं. तो एग्जाम्पल क्या है हर्षवर्धन जी? क्या उदाहरण? कैसे उदाहरण को समझिए ना. हवा जो है बह रही है, उसके कहाँ पे आधार है? आकाश में. कहीं पर टिकी नहीं है, आकाश में उड़ रही है हवा. दिख तो नहीं रहा है किसके, हवा का सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है. तो इसी तरह से ये संसार जो है, जैसे देखिए इतने सारे यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स जो है घूम रहे हैं. हाँ, तो वो सब घूम रहे हैं तो कहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं? कौन सपोर्ट है? भगवान बोले आई एम दी सपोर्ट, ऑल क्रिएटेड बींग्स रेस्ट इन मी. मेरे ऊपर सपोर्टेड है, रेस्ट कर रहे हैं. ये मत सोचिए कि हवा में घूम रहे हैं, सपोर्ट है. और उसके बाद
ओशन ऑफ कुंजी, एट द एंड ऑफ द मिलेनियम ऑल मटीरियल मैनिफेस्टेशंस एंटर इनटू माय नेचर एंड एट द बिगिनिंग ऑफ अनदर मिलेनियम माय पोटेंशियल आई क्रिएट देम अगेन.
जब क्रिएशन डिस्ट्रक्शन होता है तो सब कहाँ चला जाता है? महाविष्णु के शरीर में जाता है. महाविष्णु, महाविष्णु इनके विस्तार हैं कृष्ण के, उनके शरीर में चला जाता है. जैसे बताया था मैं उस दिन क्रिएशन के बारे में. और फिर जब क्रिएट करना होता है तो फिर से बाहर आता है.
द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी, अंडर माय विल, अंडर माय विल इट इज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड अगेन एंड अगेन. And under my will, it is annihilated at the end.
तो भगवान की इच्छा से क्या होते हैं, ये प्रकट होता है, ऑटोमेटिकली प्रकट होता है. जैसे भगवान इच्छा करेंगे ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा. और देन अगेन इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, annihilated, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन.
हमारी इच्छाएं और भगवान की इच्छा,
हमारी इच्छा होती है तो हमारी इच्छा जो होगी तो उस इच्छा को जब तक भगवान सेंसर नहीं करेंगे तो इच्छा पूरी नहीं होगी. तो भगवान जो है, अगर आप बहुत आप उनको आप बहुत एडमेंट है नहीं मुझे करना ही है तो भगवान फिर बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा नहीं है मत करो. तो नहीं नहीं मुझे करना ही है. अगर बहुत आप जोर देंगे उससे तो भगवान फिर आपकी इच्छा को सेंसन करते हैं. नहीं, हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के बदले में नहीं है. हम स्वतंत्र इच्छा करने के लिए, यही एक चीज है जो कि स्वतंत्र है भगवान से. यही एक चीज है जो भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है, इच्छा करने की. चाह सकते हैं आप भगवान से, अलग चाह सकते हैं. तो यही एक ऐसी चीज है जो कि आप अलग कर सकते हैं भगवान, भगवान की इच्छा के खिलाफ कर सकते हैं. भगवान की इच्छा के खिलाफ आप इच्छा कर सकते हैं. यही एक आपको स्पेशल चीज दिया गया जिसको भगवान कंट्रोल कर सकते हैं पर तो करते नहीं है. चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल करते नहीं है. क्यों? क्योंकि वो वेट करते हैं आप उनको इनवाइट करो कि आप कंट्रोल करो तब करेंगे कंट्रोल. अपने मन से नहीं करेंगे. जब आप बोलोगे हाँ भगवान आप आके मुझे कंट्रोल करो तब वो आके करेंगे कंट्रोल. इसीलिए बोलते हैं ना लास्ट में सर धर्मान परित्यज्य कामिकम शरणम व्रज, मतलब मुझे कंट्रोल करने दो अपने आप को. लेट मी कंट्रोल यू, कम अंडर माई शेल्टर. तो जब तक आप बोले नहीं हाँ नहीं नहीं मैं आपको कंट्रोल अभी थोड़ा मुझे कुछ करना है और बाद में कंट्रोल करिएगा मुझे। नहीं मैं अभी नहीं कंट्रोल में आना चाहता हूँ। ठीक है, जबरदस्ती नहीं कंट्रोल करते हैं, है ना। तो ही वेट व्हेन वी अलाउ हिम वॉलंटरीली, यस माय लॉर्ड आई हैव अंडरस्टूड दैट व्हेन इफ यू कंट्रोल मी दैट इज बेस्ट फॉर मी, देन कृष्णा विल कंट्रोल। और जबरदस्ती भी कर सकते हैं बट कृष्णा डजंट वॉन्ट टू पॉसिबल कंट्रोल, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना। We have to, so that is the difference between our desire. So we have to desire because in line with Krishna's desire. That is our goal. That is beneficial for everybody.
Ninth
shloka.
Avadhananjaya. All the cause cannot bind me. I am ever detached from all this material activity.
Seated.
हाँ,
तो इसमें मैं रहता हूँ, ये सब करता हूँ मैं, पर इसमें आसक्त नहीं हूँ। ये सब क्रिएशन मैं करता हूँ पर मैं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम चाहते हो इसलिए मुझे करना है, इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए करता हूँ इसलिए इसका कर्म का फल जो है मेरे ऊपर नहीं आता है। किसके ऊपर जाता है? तुम्हारे ऊपर जाता है, क्योंकि भगवान न्यूट्रल बैठे हैं ना, न्यूट्रल। आप बोलोगे तो कर देंगे, ठीक है चलो। आप सुन दो,
दिस मटेरियल नेचर विच इज वन ऑफ माई एनर्जीज इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन वो सन ऑफ थिंकिंग प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बींग्स अंडर इट्स रूल्स This manifestation is created and again and again।
हाँ, यही बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है ये स्वतंत्र नहीं है, मेरे डायरेक्शन में, मेरी अध्यक्षता, मैं अध्यक्ष हूँ, प्रकृति का अध्यक्ष मैं हूँ, है ना। मेरी अध्यक्षता में ये चल रही है। आप भी पढ़िए हर्षवर्धन को 11।
Who derive me when I descend in the human form? They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all destiny।
हाँ, तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं, जब मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो मुझे अस्वीकार करते हैं, सोचते हैं ये भगवान नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है मेरा दिव्य स्वरूप, क्यों मैं सबका, मैं भगवान बता रहे हैं, मैं जो है मैं सबका सुप्रीम हूँ, आई एम सुप्रीम लॉर्ड ऑफ एवरीबॉडी। और ये मूर्ख दुर्योधन जैसे मूर्ख व्यक्ति हैं वो बात को नहीं समझ पाते हैं।
Those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In their deluded condition, their hopes of for liberation, their fruitive
जो इस तरह से मोहित हो जाते हैं, जो मोहित हो जाते हैं कि भगवान जो है वो उनका जो मनुष्य रूप में आते हैं भगवान, तो वो सोचते नहीं नहीं ये भगवान नहीं है, तरह व्यक्ति है, तो ऐसे लोग जो है वो मोहित हो जाते हैं और दे आर अट्रैक्टेड बाई डेमोनियाक, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति से, और एथेस्टिक व्यू, नास्तिक प्रकृति हो जाती है, वो विश्वास नहीं करते हैं भगवान में, और इस विश्वास नहीं करने करने के कारण उनकी मुक्ति की जो इच्छा है, आशा है, वो सब समाप्त हो जाती है, उनको कोई चांस नहीं है मुक्ति होने का। ऐसे लोगों को
are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible.
क्या बता रहे हैं कि जो इससे इससे मोहित नहीं होते हैं वो मेरी इंटरनल पोटेंसी श्रीमती राधा रानी हैं, उनकी शरण में आते हैं। भगवान जो है, जो एक तो हो गया कि जो भगवान को अस्वीकार करते हैं, ये भगवान नहीं है, ये तो साधारण बालक है, गवे चरा रहा है। तो वो नास्तिक लोग जो होते हैं उनके मुक्ति की कोई आशा नहीं है, भगवान बता रहे हैं। पर जो लोग इससे प्रभावित नहीं होते हैं इस विचार से कि भगवान ये मनुष्य है, जो सोचते हैं कि नहीं ये तो परम भगवान है, ऐसे लोग जो हैं वो ग्रेट सोल्स, उनको भगवान होते हैं ग्रेट सोल्स, महात्मा है ना। दे आर अंडर माई प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइन नेचर, वो मेरी शरण में है, मैं उनकी रक्षा करता हूँ, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। और दे आर फुली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस बिकॉज दे नो मी एज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ भजंती, यहाँ बता रहेंगे वो भजन करते हैं मेरा, भजन भज 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 का मतलब भक्ति, भज धातु से भक्ति बना है तो भक्ति करते हैं।
Always chanting my glories, endeavoring with great determination, blowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion.
हाँ, तो भक्ति करते हैं ये जो व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं मेरी भक्ति करते हैं। सततम कीर्तयन्तु, तो कीर्तन करते हैं मेरे नाम का, सतत कीर्तन करते हैं ना? तो वैसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो कि भगवान के जो पर्सनल फॉर्म पे विश्वास करते हैं, तो भगवान का जो ये जो दो भुज द्विभुज रूप जो है, श्याम सुंदर रूप, ये इस रूप की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। भगवान बोलते हैं कि दे आर ग्रेट सोर्स एंड दे परपेचुअली, मतलब हमेशा मुझे भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। अब देखिए 15th पढ़िए। हाँ,
others who engage the revived by the cultivation of knowledge, who worship the Supreme Lord as the one without a second, as the Avatar and the universe of all.
हाँ, तो अब ज्ञान योगियों के बारे में बताया गया, अभी तक तो भक्ति योगियों के बारे में बताया गया, अब बता रहे हैं जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्ञान का सहारा लेते हैं और भगवान को ज्ञान द्वारा पूजा करते हैं। कैसे, ज्ञान से कैसे पूजा किया जा सकता है? नहीं, यहाँ बता रहे हैं कि वो क्या कैसे पूजा करते हैं। तो वो सोचते हैं कि भगवान एक हैं और वो बहुत रूपों में व्याप्त हैं, यूनिवर्सल फॉर्म की पूजा करते हैं, भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म की पूजा करते हैं। सब भगवान है, ये देखिए ये सब भगवान, हाँ सब भगवान है, फिर भी भगवान नहीं है, है ना। पर उनको लगता है कि सब भगवान है जो हर चीज की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करेंगे, मकान की पूजा करेंगे, हर चीज की पूजा करेंगे, उनको लगे सब भगवान ही है, ज्ञान है।
But it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the ritual, the healing herb, the transcendental chant, and the butter and the fire and the offering.
हाँ, पर बोल रहे हैं कृष्ण की एक्चुअली मैं ये जो अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्सल फॉर्म की पूजा करते हैं, पर वो गलत है क्योंकि ये सब नहीं हूँ, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मेरी पूजा करनी चाहिए, है ना। इसलिए बोले बट इट इज आई, मैं हूँ ये सब। विज्ञानी ये बात तो नहीं जानते कि ये सब नहीं हूँ,
नहीं
छलावा नहीं है ना, ये सत्य है क्योंकि हर चीज है भगवान से ही निकला है, है कि नहीं। तो छलावा क्या बात
है, अगर वो उनकी पूजा करते हैं तो फिर उसकी भी प्राप्त होता है भगवान,
पर भगवान को नहीं मानते ना। इनडायरेक्टली मान रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं माना है, डायरेक्ट माना है।
भगवान
नहीं हूँ पर बोल रहे कि इनकी पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, वही बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं यहाँ पे। आप ये नेचर की पूजा मत करो, ये सब तो भौतिक तत्व है, भौतिक तत्व की आप पूजा क्यों कर रहे हैं, आप मेरी पूजा करो, है ना। अब आप जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी बनाए पूजा कंपनी में आपका जो मशीन है उसकी पूजा कर रहे हैं। मशीन आप ही का है, मशीन आप ही से निकला है, आप ही के पैसे से निकला है, आपके दिमाग का उपज है कि नहीं। अब मान लीजिए कि किसकी कोई साइंटिस्ट ने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बनाया, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। अब कोई व्यक्ति जा रहा है, वास्तव में तो उसी के दिमाग की उपज है, साइंटिस्ट के दिमाग की। कोई जा रहा है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की पूजा कर रहा है कि नहीं। पूजा किसी करनी चाहिए, जिसने बनाया है उसकी पूजा करनी चाहिए ना। मशीन है उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसी के दिमाग का मैनिफेस्टेशन है। मशीन मशीन इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ इज इंटेलिजेंस। देखो देयर इज नो डिफरेंस इन मशीन है तो, बट एट द सेम टाइम द रियल वर्शिप इज डायरेक्टली वर्शिप नो लॉर्ड।
का कुछ
परसेंटेज वन नेचर है ना। हाँ वन नेचर द मटेरियल मैनिफेस्टेशन है ना।
आई एम द फादर ऑफ दिस यूनिवर्स, द मदर, द सपोर्टर एंड द ग्रांडसन। आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, द प्योरीफायर एंड द सिलेबल ओम। आई एम ऑल्सो द रिग्वेद, साम एंड इनोवेटर।
दोनों बताएंगे ये सब मैं ही हूँ। तो ये अलग अलग कोई ओम की पूजा करते हैं, हाँ ओम की पूजा करते हैं, कोई ऋग्वेद की, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब की अलग करने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं ही हूँ इसलिए मुझे ही करो। अगर मुझे करोगे तो ये सब ठीक हो जाएगा अपने आप, है कि नहीं। अलग अलग से करने की क्या जरूरत है, यही बता रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं। ये एक्चुअली ये सब मैं ही हूँ, लेकिन अलग अलग से इनकी मत करो। क्या करो, मुझे कर दो तो ऑटोमेटिक ये सब हो जाएगा।
पहले वाले लोग ने मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं ही सब कुछ हूँ।
हाँ
तो मैं ही सब कुछ हूँ तो उसमें तो ये भी आता है ना कि ओम भी आ जाएगा, रिंगवीर भी आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने लास्ट में द्वारा भी एक्सप्लेन किया
क्या
कि मैं
डिटेल बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं, थोड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं आप।
इसको ये लोग इसलिए बता रहे हैं कि जो भी पुलिस लोग आए थे
डिटेल में बता रहे हैं, एक्सप्लेन एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा समझा रहे हैं और ही बता रहे हैं। ओम जो है वो इंपर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड, साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड। भगवान जो है वो शब्द के रूप में भी आते हैं, और वो शब्द रूप जो भगवान शब्द के रूप में जो आते हैं उसको कहते हैं ओम। और दूसरा शब्द का रूप है हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो ओम का स्रोत है, ओम का स्रोत है। ओम भी जो होता है वो इसी से निकलता है, हरे कृष्ण महामंत्र।
लोग कई बार ओम को शिवजी से कर लेते हैं, ओम शिवजी का है।
हाँ वही इम्पर्सनल, इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड जो कि इस संसार को मतलब धारण करता है वो ओम लेवल पर रहता है। तो उससे शिव जी जो है वो कुछ नहीं, इम्पर्सनल नहीं है, इसीलिए शिवलिंग की पूजा होती है। लिंग इज नथिंग बट इम्पर्सनल, इम्पर्सनल इज लोग जनरली भगवान शिव की पूजा करते हैं। इम्पर्सनल
भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो तो प्रोफेशनली हो गए ना, भगवान शिव तो प्रोफेशनल है।
पर्सनल है पर भगवान शिव की पूजा नहीं करते, बोले
रिप्रेजेंट
ट्रेन हो गया पर उनके रूप की पूजा नहीं करते, देवी की पूजा करते हैं। मतलब कि वास्तव में देखा जाए तो कोई भी बिना पर्सन का नहीं हो सकता है कुछ भी, एवरीथिंग इज पर्सनल। ये तो फुलिशनेस है कि इम्पर्सनल, तो क्योंकि लोग समझ नहीं सकते इसलिए उनको इम्पर्सनल का ध्यान दिया गया। तो वास्तव में तो भगवान शिव भी पर्सनल ही है कि नहीं। भगवान शिव इज ऑल्सो पर्सनल, इज पर्सन, पर लोग समझ नहीं पाते इसलिए उनके लिए चलो इम्पर्सनल बना दिया, चलो इम्पर्सनल बना दिया, शिवलिंग की पूजा करो। इसलिए अदरवाइज लॉर्ड शिव इज ऑल्सो पर्सन, इवन आप पर्सन उनकी पूजा करते हो तो भगवान शिव की भी पूजा करते हो। भगवान शिव जो है वो तो पर्सन है, कोई भी व्यक्ति बिना पर्सनल के चल सकते
हाँ
इम्पर्सनल ही है ना, कोई रूप नहीं है उसका, आँख कान नाक नहीं, इसी अंदर इम्पर्सनल है ना, इम्पर्सनल का यही होता है कि अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, और भगवान जी का तो पर्सनैलिटी है पर फीलिंग का पर्सनैलिटी नहीं है, फीलिंग बस कहीं भी बना दो ऐसे, इसलिए यहाँ पे वही बता रहे भगवान कि ये सारे जो हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आई एम द ऋग्वेद, आई एम सामवेद, आई एम ओम, आई एम द नॉलेज, ये सारी चीजें बता रहे हैं।
ये जो इंपर्सनल का कॉन्सेप्ट है आजकल भी हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो अपने लोगो डिसाइड करते हैं, लोगो डिसाइड करके कोई व्यक्ति लोगो लिखता है तो उसे याद आता है कि
हाँ।
कोई इंस्टीट्यूट है,
करेक्ट,
वो पर्सनैलिटी है,
ये लोगो है टाइप का, लोगो टाइप का होगा, पर ओरिजिनल में तो कोई मालिक होगा कंपनी का, लेकिन लोगो थोड़े ना मालिक है कंपनी का, लोगो ठीक है, लोगो देख रहे जहाँ कंपनी है, लेकिन इसका मतलब थोड़े लोगो ही कंपनी है या लोगो की ही कंपनी है, जो कंपनी का मालिक है वो लोगो की तरह होगा, ऐसा थोड़े है, मुझे मान लिया हमारी संस्था का नाम इस्कॉन रख दिया गया, जो थोड़ा है कि इसके मालिक इस्कॉन था या इसमें इस्कॉन की पूजा करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है, ये शब्द है, ये शब्द रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कृष्णा, कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन है ना, बट इट इज ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, इस्कॉन की ये इस्कॉन लिख दो लिखा, प्लीज रिप्रेजेंट,
आई एम द गॉड, द रिटेनर, द मास्टर, द विटनेस, द अबोड, द रिफ्यूजी एंड द मोस्ट डियर फ्रेंड, I am the creation and the animation, the basis of everything, writing place, the eternal peace.
बाप ने बारे में बताया कि मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान बता रहे हैं कि मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं ही ये सब कुछ हूँ, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है आगे पढ़ते जी है, इसे एग्जाम्पल दे रहे हैं,
oh Arjun, as he thinks and as he told and said,
yes. हाँ ये तो इम्पर्सनल पर्सन भी है वो भी भगवदगीता पढ़ते हैं तो उन्हें इन चीज़ों को रिलाइजेशन को नहीं होता, इन चीज़ समझ को नहीं आती है, जैसे इसमें सबका लिखा हुआ है वो
फ्रेम ऑफ रेफरेंस गलत है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही गलत हो गया उनका, इसी चीज को जब उनकी तरह से देखेंगे ना साहब बिल्कुल उनकी तरह दिखेगा,
उनका तरीका क्या होता है
वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उन्होंने वो क्या सोचते हैं कि ये भगवान जो है जो कृष्ण जो बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो डिस्कशन हो रहा है तो कृष्ण बोल रहे हैं ये कृष्ण जो है वास्तव में ये परम भगवान नहीं है, ये जो है हमारे जैसे आत्मा है, इन्होंने रियलाइज कर लिया है ये यूनिवर्सल फॉर्म के पार्ट हैं, ये बोल रहे हैं, ये जब मैं बोलते हैं तो ये सोचते हैं कि पूरा यूनिवर्सल फॉर्म बोल रहे हैं,
ये भी हो सकता है जब वो
ऐसे सोचते
हैं तो पता ही नहीं,
हाँ, हाँ, वो पर्सनल ये एक कैसे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी एक इतने रूप में आ सकते हैं कैसे, वो बिल्कुल बुद्धि के बाहर हो जाता है,
वो भी
कैसे ये पूरा ब्रह्मांड जिससे आया वो उसने आ गया कैसे, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये नहीं
समझ
वही material concept, this is they bring material concept because that's why this conception, impersonal conception is given, because people have material mentality, they want to know the things through material brain, therefore for make them understand some impersonal form of the Lord is given in the scripture, ताकि वो भी कुछ समझ सके, ठीक है personal तो समझ से बाहर है तो हम impersonal की पूजा करें,
impersonal जो universal goal क्या है आपकी, क्यों दिया
impersonal का goal ये है कि लोगों को किसी तरह से भगवान के क्रोध में लाना,
अल्टीमेटली तो पर्सनली क्लोज जाएंगे,
अल्टीमेटली जाएंगे, वही भगवान बताएंगे यहाँ से अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो कम टू मी ना, जो अक्सर ब्रह्म की पूजा करते हैं दे विल एट लास्ट दे विल रीच टू मी, भगवान बताएंगे एट लास्ट दे विल रीच टू मी स्टेप बाय स्टेप। तो भक्ति युग तो पहले ही पार कर चुके हैं वो सब स्टेज, जो भक्ति युग में आते हैं वो ऑलरेडी बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्य थे, बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञान ज्ञानवान मतलब धनवान मतलब पूरी तरह से धनी, इस तरह ज्ञानवान मतलब जो ज्ञान में प्रत्यक्ष हो जाता है वो क्या करता है मेरी शरण में आता है। हाँ तो जो भी भक्ति से अट्रैक्टेड होता है इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी ये सब स्टेजेस पार कर चुका है पिछले जन्म में, जब तक इज गेटिंग रिलेटेड टू द पर्सनल फिकर ऑफ द लॉर्ड। वो क्या सोचते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि भगवान को एक पेज मानते हैं, हम भगवान को एक पेज मानते हैं ऐसा, तो बोलते हैं कि एक पेज को अगर हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो पेज अब नहीं रहा, अब तो टुकड़ा हो गया, पेज तो रहा नहीं। उनके कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए भगवान एक पेज के समान है, अगर ब्रह्मांड के रूप में परिवर्तित हुए तो पेज ओरिजिनल नहीं रहा, अब टुकड़ा टुकड़ा हो गया, अब भगवान का जो स्रोत थे वो क्या हो गया, अब टुकड़े टुकड़े हो गए, पूरा विस्तार हो गया उनका, ओरिजिनल नहीं रहे, मटेरियल कॉन्सेप्ट। और वास्तव में भगवान अगर अपने आप को विस्तार भी करते हैं फिर भी भगवान रहते हैं वहां पे, रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, कितना भी विस्तार, पूर्णमिदम पूर्णमद पुनात पूर्णम उदस्यते, एक पूर्ण भी अगर भगवान से पूर्ण निकाल दिया है फिर भी पूर्ण इसलिए कि अश्रद्धा धान श्रद्धा नहीं है, फेस की जरूरत है, अपना दिमाग लगाएंगे तो इसलिए मुश्किल हो जाएगा, तो वो क्या सोचते हैं कि नहीं मैं अपने दिमाग से समझूंगा, जैसे वैज्ञानिक मैं अपने दिमाग से समझने का प्रयास करूंगा, मैं पहले टेलीस्कोप यूज करूंगा भगवान को देख लूंगा तब मैं पर्सनल फॉर्म में विश्वास करूंगा।
ये तो मान लिया कि कागज से समान ही, अगर अदर एग्जाम्पल दें तीसरे के टुकड़े पड़े हुए हैं उसमें सनलाइट पड़ रही है तो तीसरे के भी सनलाइट में रिफ्लेक्ट हो रही है, यूनिवर्स लाइक द पार्ट ऑफ द ग्लासेस एंड सन इज वन इज वन ऑलवेज परफेक्ट, वो एक्चुअली नहीं कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा
है, इसलिए कि उनकी बुद्धि इस लेवल पर नहीं पहुंची है समझने की, वो इस लेवल पे नहीं पहुंचे, वो नहीं समझ पाते कि अरे एक व्यक्ति है वो कैसे हर जगह व्याप्त हो सकते हैं, जितेंद्र प्रभु है तो यहाँ रह सकते हैं फिर आई टी दिल्ली में कैसे रह सकते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं है समझ पाता, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा, अगर जीवा जो है अगर 8-9 फॉर्म में एक्सपेंड कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं अनलिमिटेड फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब वी कैन एक्सपेंड जीवा कैन एक्सपेंड इन 9 फॉर्म 9 रूपों में आप विस्तार कर सकते हैं जीव, भगवान तो अनलिमिटेड रूप में विस्तार, इस कंडीशन में कैसे करेंगे, कैन यू रियलाइज दैट यू आर सोल देन यू कैन डू नो वॉट एवर यू सी 9 एक्सपेंशन विस्तार करते हैं, नहीं समझे विस्तार का मतलब क्या होता है, जैसे आप हैं यहाँ पे अब तो जैसे 9 पर्सनालिटी में आप एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसे टाइम, जैसे कर्दम मुनि का एग्जाम्पल दिया गया कि भारत में कर्दम मुनि ने 9 रूपों में विस्तार कर 9 कर्दम मुनि बन गए, राइट टू सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ देवहूति ही वाइफ देवहूति सिक्स डिजायर, तो as a grihastha. So his wife served him very nicely. So he wanted to give her satisfaction, give her child. So he expanded in nine forms. And then he, so like that. Anyway, that is detail, the separate branch. But here we have to understand that this material concept, that's why we should not bring material concept in spirituality. Then it becomes it. So it's inconceivable. Lord's potency is inconceivable. Lord, Mother is apne muh mein pure brahmand ko dikhate hain. Hai ki nahi? Asad ji. Jis brahmand mein hai, us brahmand ko dikha rahe apne muh mein. और उस मुंह में मदर यशोदा देख रही है पूरे ब्रह्मांड को, और ये भी देख रही है कि वो देख रही है कृष्ण के मुंह में. आप समझ रहे हैं, वो मुंह में दिखाई दे रहा है कि वो देख रही है कृष्ण के मुंह में, ये भी दिखाई दे रहा है. इसे इनकंसीवेबल. लॉर्ड पोटेंशियल इनकंसीवेबल. कृष्णा वांटेड टू शो दैट everything is in me, still I am separate from my under. Phir bhi main, aur agar main andar aa bhi jaunga phir bhi main separate. And this is called achintya, inconceivable shakti. Achintya is level pe, jab hum conditionless stage mein, then it is achintya, inconceivable. When it becomes perfected, then ये टाइम प्लेस, टाइम और स्पेस का जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इससे बियॉन्ड जाएंगे तब हमको अचिंत्य नहीं रहेगा. लेकिन नाउ वी हैव यू नो, हर चीज रेफरेंस से देखते हैं. अच्छा, इतना बड़ा रूम है तो इससे 10 गुना बड़ा होगा या 20 गुना बड़ा हो सकता है, इस तरह से सोचते हैं, है ना. तो देयरफॉर इट बिकम्स अचिंत्य, इनकंसीवेबल, है कि नहीं. जैसे एग्जाम्पल दिया था डॉक्टर फॉक्स का. डॉक्टर फॉक्स के लिए अटलांटिक ओशन जो है वो इनकंसीवेबल है, लेकिन सबके लिए थोड़े ना इनकंसीवेबल है. जो बाहर रहता है वो तो देखता है कि हाँ भाई ये सब बहुत बड़ा है, वो तो सोचते हैं क्यों नहीं हो सकते. और वो तो कुएं में रहते हैं, इसलिए उनको वो सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कभी हो भी सकता है. दिस इज लाइक दैट, दैट्स व्हाई इट इज इनकंसीवेबल. भगवान का जो रूप होता है वो पर्सनल फीचर इनकंसीवेबल. इसलिए एक ही तरीका है विश्वास, विश्वास करना पड़ेगा. हाँ, इट इज इनकंसीवेबल एंड कैन बी पॉसिबल, फाइन, है ना. अगर इतना बड़ा कुआं हो सकता है तो इस तरह समुद्र का है, समुद्र भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ठीक है ना. एंड लॉर्ड इज देयर, सो यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो सिंपल, देयरफॉर इट इज पॉसिबल. तो अब बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो प्रूफ करूंगा एक्सपेरिमेंट करके तब बता करूंगा. जैसे कल के ड्रामा में कि मैं पहले प्रूफ करूंगा कि ब्रह्मांड कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी. तो बिग बैंग करेगा तो फिर खुद ही नहीं रहेगा. एक्सप्लोजन, अगला एक्सप्लोजन अगर हो भी गया गलती से तो उसको एक्सप्लोज करने के लिए रहेगा नहीं. इतना बड़ा एक्सप्लोजन जिससे कि ब्रह्मांड हो जाए तो वो क्या करेगा वहां से एक्सप्लोजन होने के बाद, उसका तो एक्सप्लोजन हो जाएगा. हाउ कैन यू क्रिएट द यूनिवर्स? यूनिवर्स को आप अगर बनाओगे, बिग बैंग मान लो कि प्रूफ हो गया, लेकिन सब बोल जाएंगे बिग बैंग थ्योरी इज प्रूफ दैट इज करेक्ट. अब आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन करने का मतलब क्या है, आपको ब्रह्मांड क्रिएट करना पड़ेगा. दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन ना. तो यू आर गोइंग टू क्रिएट ए डिमॉन्स्ट्रेशन, तो एक्सप्लोजन करना पड़ेगा आपको. उतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा तो आप रहोगे वहां पे ऑब्जर्वेशन करने के लिए. जैसे मैं पुलिस में देखो, इट इज इनकंसीवेबल. Even inverse creation is inconceivable. For us, है ना? For us it is inconceivable. We cannot understand how the universe was created. So we have to hear from scriptures that the how God created the universe. Then only we can understand. Or demonstration नहीं कर सकते. कैसे करेंगे? How will you demonstrate the creation of the universe? है ना? कोई आइडिया नहीं, इसलिए कोई तरीका नहीं है जो समझने का. एक ही तरीका है कि इसे हियर. नेक्स्ट पढ़ी,
वो अर्जुन अजी भी
कौन सा है?
19. वो अर्जुन अजी भी
and I will hold and send forth the rain. I am immortality and I am also death personified. Both space and matter are in me.
Next.
20. Those who study the Vedas and bring the soul juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the fire, heavenly planets of Indra.
जैसे जो वेदों का अध्ययन करते हैं और सोम जो पीते हैं वो कहाँ जाते हैं? हेवन में जाते हैं. सोम रस होता है जो कि ड्रिंकिंग होता है टाइप का, हेवनली प्लैनेट में ड्रिंकिंग ये होता है. पर वो डिफरेंट टाइप का होता है इस तरह. आज जल्दी जल्दी पढ़िए क्योंकि अब खत्म होने प्रचार खत्म हो जाएगा.
9:30
हो गया ना.
When they have thus enjoyed vast heavenly sense of pleasure and the result of their five activities are exhausted, they return to this mortal land again. Thus those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of three Vedas achieve only repeated birth in death.
जो वेदों का अध्ययन करके और रिचुअल की पूजा करते हैं तो ज्यादा ज्यादा स्वर्ग में जाते हैं, फिर से वहाँ से फिर जब पुण्य खत्म हो जाता है फिर से नीचे गिर जाते हैं. क्लियर बता रहे हैं यहाँ पे कि पर जो मेरी पूजा करते हैं डायरेक्टली मेरे दिव्य स्वरूप की पूजा करते हैं, हैं? उनको मैं जो भी कमी है उसको देता हूँ और जो भी उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ. जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं.
I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down.
जो भगवान के जो ये समझते हैं कि भगवान ही केवल एंजॉयर हैं, भोग करने वाले हैं, और समझते हैं कि मैं भोग करने वाला हूँ या कोई और भोग करने वाला है, तो उसका क्या होता है? फॉल डाउन, मतलब वहाँ से गिर जाते हैं आध्यात्मिक जगह से.
Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among the dead. And those who worship me will be with me.
Those who worship ghosts and spirits. Ghosts or spirits? Antar kya hai, dhanam kya hai, soul se kya
hai. Ghosts and spirits, Tantra Mantra Vidya mein jo puja karte hai na, ghosts. वही है, घोष के अलग अलग वेराइटीज बता रहे हैं. कई तरह के घोष होते हैं
ना.
मतलब देखो इतना मुश्किल होता है बाकी लोगों की पूजा करना, मेरी पूजा क्यों नहीं करते? मैं तो मुझे पत्ता भी दे दोगे तुम मान स्वीकार कर लूंगा. तो क्या समस्या है, क्यों नहीं पूजा करते नहीं बोल रहे हैं?
27. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform to that, O son of Kunti, I am offering to you.
जो भी करिए मेरे को चढ़ाइए.
28. In this way, you will be free from bondage to work and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. 29. I envy no one, nor I am partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. 30. Even if one commits the most abominable action, if he engages in devotional service, he should consider sanctity, because it's properly situated in his determination.
He is properly situated in his determination.
Mm-hmm. से मतलब मुझे भगवान की पूजा करनी है। बाकी कन्फर्म हो गया कि हाँ यही करना है। कभी कभी गलती हो सकती है, गलती होगी मतलब एक्सीडेंटल मिस्टेक, जान बुझ के नहीं किया गया, जान बुझ के नहीं, एक्सीडेंटल हो गया, हैबिट बनी हुई है, कंडीशनिंग ऐसे कर हो गया गलती से, लेकिन जानबूझ के नहीं, जानबूझ के करते हैं तो फिर वो नहीं है साधु, नहीं है उनको साधु नहीं माना जाए, बन सकते हैं
क्यों नहीं। Those who take shelter in me, though deity of lower birth, women, vestas, and sugars, can attain the supreme destination. 33. How much more this is so of the righteous Brahmanas, the devotees, and the sentient kings. Therefore, having come to this temporary, miserable world, engage in loving service unto me. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to the and worship me. Be completely absorbed in me. Surely,
come to me.